प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग चार, लेक्चर नंबर 266। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोये सौवसाहूर्ण सुर असुर नरपति वंद्यने नष्टगाति कर्मणे प्रणमन करू धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने परिशेष तीर्थं कर अने सौ सिद्ध शुद्ध अस्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवी व्याचरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदो वाली हूँ मनुज क्षेत्र वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ सिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधर अने अध्यापको सर्वसाहु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्य निजे नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य ऋषि कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 38 पर हम आ गए, 38। नीचे का जो पैराग्राफ है यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। कल बात यह आई थी कि आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, वैसे प्रत्येक द्रव्य में है, तो किसी परद्रव्य का वो ना ग्रहण करता है ना छोड़ता है, छोड़ ही नहीं सकता और ग्रहण भी नहीं कर सकता। और फिर ये मानता है कि मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा परद्रव्य छोड़े, ऐसी उसके मान्यता है, और वो छोड़ने से मैंने धर्म किया ऐसा भी मानता है। अभी हम पढ़ेंगे नीचे जो लिखा है, दया दान व्रत भक्ति, ये क्या है सब के जो शुभ परिणाम है वह धर्म नहीं। तो धर्म नहीं तो क्या है, तो के अधर्म है। उसका अधर्म कहते तो हमने सब इतना किया तो अधर्म क्या ऐसा लगता है, अधर्म है उसमें धर्म मानना वह मिथ्यात्व है। जो जैन नहीं है उसको हम अजैन कहेंगे, तो ऐसे जो धर्म नहीं है वो क्या है, अधर्म है। तो कहते उसको धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। अभी तो दृष्टि में अधर्म का त्याग हुआ नहीं और बाहर के त्याग में मैं त्यागी हो गया ऐसा कहां से आया, मान लिया उसने। अब मिथ्यात्व पड़ा है राग, मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी भी है ही, वहां पर सभी है वहां पर, और मानता है कि मैंने ये छोड़ दिया मैं त्यागी हो गया। ऐसी बातें है बापू, त्यागी तो उन्हें कहेंगे कि जिनके मिथ्यात्व तो गया अविरति भी गई है और वो खाली बाहर के किसी क्रिया से नहीं होता है, अंतरंग में जो शुद्धोपयोग में उन्होंने आत्मा का अनुभव किया है तभी ये बातें होगी। स्थिरता इतनी अधिक है, उसको चारित्र कहेंगे हम। हाँ, आपका ये प्रश्न है, अधर्म क्यों कहा, व्यवहार धर्म क्यों नहीं कहा? व्यवहार धर्म तो उसी के होते हैं जिसके निश्चय है। क्या करे, सही है। उसके निश्चय प्रकट ही नहीं हुआ, जो कुछ कर रहा है वो अधर्म है बस। और व्यवहार धर्म कहने से कुछ किसी न किसी फॉर्म में धर्म है ना, ऐसा उसको खुश लगता है, खुशी लगती है। निश्चय बिना का व्यवहार होता ही नहीं, लोगों की यही मान्यता है। ये व्यवहार कहो इसको और फिर इस व्यवहार करते करते निश्चय होगा, ऐसी ही मान्यता और प्ररूपना चलती है बाहर सब जगह, जो सही है नहीं है। क्या कहते हैं नीचे का लेन लास्ट, प्रभु आत्मा अनंत 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 गुण से भरा है जिसकी संख्या का पार नहीं। मिला क्या पेज नंबर 39 पर आए हम अभी, उसमें पेज नंबर अलग होगा उनका भी। हाँ 39, हाँ देखो, जिसकी संख्या का पार नहीं, अनंत है ने संख्या में अनंत, जिसको कोई अंत नहीं, नो एंड, एक एक आत्मा में। हाँ, जितने आत्मा है उनसे अनंत गुणे परमाणु है, जितने आत्मा है ने जितने जीव राशि जिसको कहेंगे, तो उससे अनंत गुणे परमाणु। हमने देखा था, आपको याद होगा, तो जो एक द्विरूप वर्ग धारा आती है, सुना है आपने कभी द्विरूप वर्ग धारा, दो दो का वर्ग, और उस सीक्वेंस ऐसे कि वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग, दो का वर्ग कितना होता है चार, चार का वर्ग सोलह, सोलह का वर्ग 256, 256 का वर्ग हाँ 65536 जिसको पन्नटी कहेंगे, उसका वर्ग बादान, उसका वर्ग इकट्ठी, वो 20 डिजिट्स प्रमाण हो जाता है। तो छह बार किया तो हमारे हम तो डायरेक्ट तो उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते, हमारे इसमें भी नहीं आएंगे उसके फिगर कैलकुलेटर में। तो कहते कि यहाँ क्या करना है, ये द्विरूप वर्ग धारा चलती रहेगी कहाँ तक, केवल ज्ञान तक। तो कहते जीव राशि वाला जो अनंत है उसका एक बार वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, ऐसे अनंतानंत बार, खाली अनंत बार नहीं, परितानंत भी नहीं, युक्तानंत भी, अनंतानंत बार करो तब जाके पुद्गल की संख्या आएगी। इतने पुद्गल है, पुद्गल परमाणु, परमाणु के परमाणु एक सिंगल द्रव्य है। हाँ देखो, और एक्सप्लेन इसलिए कि देखो, हम एक जीव की बात करेंगे तो एक जीव के साथ उसका अपना कर्म जुड़ा है, उसका तेजस शरीर है, उसका औदारिक या वैकृत जो शरीर है, तो एक समय में एक जीव कितना कर्म ग्रहण करता है, तो अनंत तो कारमाण वर्गणा ग्रहण करते हैं, कितने अनंत, अभवियों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग, एक वर्गणा में इतने परमाणु, और ऐसी वर्गणाएं कितनी, तो अनंत, एक समय में, एक समय में इतना अनंत अनंत ग्रहण करता है, और हर समय ऐसा ग्रहण चलता है। आप कहेंगे छोड़ना भी चलता है ना, हाँ चलता है, पर ऑलरेडी स्टॉक में तो था ही ना, तो पहले अनादि से ही है, तो वो तो जितना ग्रहण करता है अनंतों में उसको और असंख्यात गुणा करो, जिसको डेढ़ गुना नहीं कहते उससे गुणित, वो हिसाब हमको यहाँ नहीं लेना है, परंतु अनंतानंत इतने परमाणु सत्ता में हमेशा पड़े रहेंगे, कर्म के इतने ही अनंत, तेजस के इतने अनंत, औदारिक के अपने अपने अनंत, ये तो तीन राशियां इतनी एक जीव के साथ, इतना ही नहीं तो वो जो एक एक परमाणु है ना, कर्म का हो, औदारिक का हो या तेजस का हो, उसके अपने अपने विसरसोपचय कहते हैं, विसरसायन नेचुरली, उपचय ने संचित हुए है, यानी कैसे कि उसमें जो स्निग्ध रुक्षता के कारण अन्य परमाणु उसके साथ मेरी भाषा में चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, उसका स्कंद बन गए वहां पर, यानी एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे परमाणु। देखो कर्म ही कितने, तो बहुत ज्यादा है, अब वहां पर एक एक कर्म परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे अन्य विसर सोपे के परमाणु, दूसरे परमाणु के साथ उतने ही अनंत, तीसरे परमाणु के साथ उतने ही अनंत। ऐसे कर्म शरीर में तो अनंत अनंत परमाणु है और हरेक के अपने अपना विसर सोपे का जो पुंज है वो मिलकर उसी क्षेत्र में वो भी रहता है। तेजस का अपना विसर सोपे जुदा, औदारिक का अपना विसर सोपे जुदा। तो हम कहने के लिए तो तीन शरीर कहेंगे, हमारा एक तेजस है, कारवाण है, औदारिक है, और तीन के साथ उससे अनंतानंत गुणे वो तीन राशियां और है, यानी ऐसे छह राशियां यानी छह परमाणुओं के जो ढेर हम कहेंगे एक एक जीव के साथ। ऐसे जीव कितने हैं संसारी जीवों के, सबके साथ तो होगे कि नहीं होगे? ये तो जीवों के साथ वाले जो हमने गिनाए, आप कहेंगे निगोद के तो सब मिलकर हो गए ना, उनके हरेक के कर्म शरीर जुदे है, उनके हरेक के तेजस जुदे है। और इस लोक में पूरे ऐसे एक एक आकाश के प्रदेश पर अनंत तो सिंगल परमाणु है, एक प्रदेश पर, उसी एक प्रदेश पर दो अणुओं का सिंगल प्रदेशी स्कंध है वो भी अनंत है, तीन अणुओं का सिंगल प्रदेशी स्कंध वो भी अनंत है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ वो उनका बंध नहीं हुआ है, क्योंकि उनके जो अविभाग प्रतिच्छेद जो होगी स्निग्ध अंश रूपांश उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, वो एक में के साथ चिपके हुए नहीं। आकाश की अवगाहना ही ऐसी अद्भुत है, एक ही प्रदेश में इतने अनंत अनंत को जगह देता है, यानी कितने ही स्कंद ऐसे है कि है उसमें अनंत परमाणु फिर भी वो एक प्रदेश वाले है, एक प्रदेश ही अनंत परमाणुओं का स्कंद भी हो सकता है। तो ऐसे ये सारे एक दो परमाणु तीन परमाणु से लेकर अनंत परमाणुओं तक के जो स्कंद है वो उसी आकाश प्रदेश में है। सिंगल सिंगल परमाणु आप कहेंगे एक प्रदेश में एक ही परमाणु आएगा, नहीं, एक प्रदेश में सिंगल परमाणु भी अनंत है। तो ये पुद्गल की अनंतता है। और ये तो हमने ऐसे ही देखे आकाश प्रदेश में अलग अलग वर्गणाओं का वर्णन आता है शास्त्रों में।
तो वॉल्यूम ऑफ आकाश का एक प्रदेश और वॉल्यूम ऑफ एक परमाणु
सेम है, वॉल्यूम सेम है, फिर भी उसी एक आकाश के एक प्रदेश में इतनों का अवगाहना दी जाती।
जैसे ज्ञान में अनंत पदार्थों को जानने की शक्ति है, कैपेसिटी है, वैसे आकाश द्रव्य के एक प्रदेश में अनंतों को अवगाहना दे ऐसी शक्ति है।
उसी में कालानु है, धर्म का एक प्रदेश है, अधर्म का एक प्रदेश है, आकाश तो स्वयं है ही है।
और तो और
जीवों के अनंत जीवों के असंख्यात प्रदेश, नहीं समझे? एक जीव का एक ही प्रदेश नहीं आता उसमें, एक जीव कितना प्रदेश रोकेगा मान लेते, इतने असंख्यात प्रदेश रोके, तो आकाश के एक एक प्रदेश पर जितना रोका है ना उसमें एक एक जीव के असंख्यात अपने असंख्यात प्रदेश है, क्योंकि उसके पूरे प्रदेश फैल जावे तो लोक प्रमाण हो जावे। समझो जीव का साइज आधा लोक होता तो आकाश के एक प्रदेश पर जीव के दो प्रदेश होते, जीव का साइज 1/4 लोक होता, हाँ, तो एक प्रदेश पर चार चार प्रदेश होते, 1/10 होगा साइज, तो आकाश के एक प्रदेश पर जीव के 10-10 प्रदेश होते, 1000वां भाग प्रमाण होता तो एक एक प्रदेश पर 1000 होते। अभी लोक का प्रमाण कितना बड़ा है और हम अभी जितनी अवगाहना है वो कितनी है, तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, तो उसमें एक एक प्रदेश पर जीव के अपने असंख्यात प्रदेश है, उनको भी ऐसा है, क्योंकि पार्श्वधनुष कहाँ है, अरे पूरा ढाई द्वीप भी लोक का असंख्यात भाग है, एक मनुष्य नहीं सब मनुष्य मिलकर भी, और वो जो यहाँ रहने का ठिकाना है वो भी लोक का असंख्या, लोक कितना बड़ा है हमको उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते।
और इसमें पंच परावर्तन किया अनंत भाव,
वो पंच परावर्तन तो आप पांचों ही प्रकार से बताते हैं ना, कौन कौन से पुद्गल परमाणु ग्रहण किए थे, कहाँ कहाँ जन्म लिया था, काल के कौन से उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी कब जन्म लिया था, वो बहुत विस्तार है उसका।
वैसे पंच परावर्तन भी जीव ने अनंत बार किए,
अनंतों बार किए, क्योंकि ये पंच परावर्तन क्या है, काल गिनने का एक माप है।
अच्छा।
जैसे हम कहेंगे हम 12 घंटे बीत गए, सुबह से 12 घंटे बीत गए, तो 12 घंटे में हम कहेंगे वो तो सेकंड काटा कितना टाइम घुमा, मिनट काटा कितना घुमा, आवर का काटा कितना घुमा, उसके परावर्तन कितने हुए, ऐसे जो हम अनादि से है એને કોઈ બિગિનિંગ હિ નહીં હૈ. તો ભલે વો સબસે અનંત 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 બડા જો સબસે બડા હૈ વો ભાવ પરાવર્તન હૈ વો ભી જીવને અનંત વાર કિયે એક બાર નહીં. और वो परावर्तन को नापने का बहुत अलग से तरीका है. वो सारे जो कुछ वहाँ नापने वो क्रम से जब होते हैं तब नापते हैं. बीच बीच में अनंत काल जाता है वो क्रम से वो नंबर नहीं आता है. अब खाली उसको 5 मिनट में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप वो यूट्यूब पर देखना 34 घंटे पढ़ाया है वो पंच परावर्तन. अपने देवलाली में शिविर हुआ था ना. हाँ. तो ये जीव को जब पंच परावर्तन का ख्याल आता है तो लगता है ये इतना काल मैंने बिताया कहाँ. तो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता आया है. ऐसे कोई भाव नहीं कि इस जीव ने नहीं किए थे वो भी क्रम से. ऐसा कोई क्षेत्र नहीं लोकाकाश का एक भी प्रदेश की जहाँ अनंतों बार जन्म नहीं लिया. उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी का ऐसा समय नहीं कि जिसमें क्रम से भी उसने अनंतों बार जन्म नहीं किया है. ऐसे भव परावर्तन में किसी भी भव के मिथ्यात्व अवस्था में देव के तो 31 सागर तक के भव करेंगे. तो 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर नरक में 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर एक एक समय से बढ़ते हुए क्रम से जब भाव हो जाते हैं तब जाके एक परावर्तन होता है भव का. ऐसे भी उसने अनंतों बार किए. यानी इसको अभी याद नहीं है. अभी खाली मैं मनुष्य हूँ मेरा इतना जीवन है मैं इतने साल का हूँ बस इतना सोच कर बैठा है. और ये कब खत्म होगा क्योंकि आयु बांध कर आया है अपने ही परिणामों से और अपनी ही योग्यता से रहने वाला है अपनी योग्यता से चला जाएगा. यानी अब ये सारा जो अवसर आ चुका है कि इतने जिसको कहेंगे रुचि भी है स्वाध्याय की और वो समझ सके इतनी बुद्धि भी है. बुद्धि तो सबके पास है पर जिसमें रुचि होती है उसमें उसका उपयोग लगता भी है और समझ में आता भी है. यहाँ तक आकर अगर ये छूट जावे तो कब मिला ऐसे तो है ना. क्योंकि तीर्थंकरों के समोचरण भी अनंत बार जाके आया है. कुछ यानी किसी उपदेश नहीं मिला ये नहीं हुआ उसके कारण रुका हुआ नहीं हुआ. अपने स्वयं के ही कारण रुका हुआ है और स्वयं ही उसका पुरुषार्थ कर सकता है. यानी हमें इसकी जिसको कि पंच परावर्तन से डर लगे तो अच्छा है. क्योंकि हम निडर होकर जैसे हमारा रोज का रूटीन एक बना लिया है बस उसी में हम संतुष्ट होकर बैठ गए और लगता भी हमने इतना धर्म किया बस थोड़ा सा इधर बस इसमें भी थोड़ी रुचि उसमें भी थोड़ी रुचि उसमें भी थोड़ी रुचि ऐसा चलता है. क्या कहते हैं यहाँ पर देखो
तो बात अधूरी रह गई.
39
आप जो बता रहे थे कि कर्म के ऊपर विशेष उपचय है उनके साथ कर्मों के साथ
कर्मों के
तो
साथ
वो
है?
तो ऐसा आप कहने से हमको मानना पड़ता है. हाँ लेकिन ऐसा हम देखते ये औदारिक शरीर है और आप अपने घर से यहाँ आ रहे हैं तो क्या किया आपने. वो जो सफेद सफेद कुछ रहते हैं ना क्या बोलते हैं वो धूल नहीं समझे पॉन्ड्स पाउडर
पाउडर पाउडर जो कोई आप...
और अन्य जो कुछ होता हो वो लगा क्या है तो आपका शरीर है क्या. फिर लगाया तो पुद्गल और आपने क्या क्या बस से आए या समझो चलते आए जो भी किया हो या ट्रेन से आए तो ट्रेन में बाकी रास्ते पर की धूल भी तो लगेगी कि नहीं चेहरे पे वो एडिशनल हो गई और वो दिखने में तो चेहरा दिखता है लेकिन उसके साथ में वो विसर सोच है वो भी अनंत होंगी. यानी ये तो हम समझ सकते हैं अभी वैसे
तो ऊपर से लगा हुआ तो समझ में आता है पर ये तो जहाँ पूरे अंदर में जितना पिंड है पूरा का पूरा वो पिंड के प्रत्येक परमाणु के साथ अपने विसरस उपच है.
ये तो आपने जीव के साथ पुद्गलों की बात करी और भी आपको देखना है तो पहले ये नक्की करो जो जो दिखता है वह पुद्गल है. तो ये जो क्या बोलते हैं कबर्ड है पंखा है लकड़ी है दीवार है यहाँ वहाँ का जीव मौजूद है लेकिन वहाँ पर भी पुद्गल है. यानी ये जो बात बता रहे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो खाल में आती है. अरे बाप रे आज तक मैंने तो कुछ समझा ही नहीं ऐसी बात होती है. हाँ अब आप आगे बढ़े.
जीव के ग्रहण योग्य तो थोड़ी ही वर्गना है. हाँ औदारिक से आहार वर्गना है भाषा वर्गना है तेजस वर्गना है कारमण वर्गना है मनोवर्गना ये तो इतने ग्रहण करता है जो फिर शरीर रूप से बनती है। शरीर रूप से होने पर उसका नाम अलग कुछ हो जाता है, अभी उसकी तो बात नहीं करनी, पर ऐसे अलग अलग वर्गणा के भी प्रकार जो है 23 जाति के वर्गणाएं बताई है। हाँ, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक पूरी पुस्तक वो वर्गणा के ऊपर हमने पढ़ी। धवला में आई थी
आपके सामने, कोई भी विषय निकालो हाँ। तो उसके ऊपर आपके प्रवचन है, आपके सीडीज है, आपके क्या बोलते हैं
अभी जिनागम है। इतना आगाध है
हाँ, तो हम क्या क्या पढ़े उससे अच्छा तो हम
अपने को पढ़ना बस,
उससे तो न पूछे तो अच्छे
अपने को पढ़ना।
नहीं तो आज बोला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ो, कल बोलेंगे करणानियोग पढ़ो, परसों बोलेंगे जैन भूगोल पढ़ो, तो ऐसा होने से तो लोग पूछना बंद कर देंगे।
क्या करे, इतना अभी कुछ नहीं रहा है, ओरिजिनल में क्या होगा द्वादश। अरे ये तो गिने चुने इतनी सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं उसके सामने। देखो आगे बढ़ते हैं, वो आई ना एक एक आत्मा में। हाँ, पेज नंबर 39। जितने आत्मा है उनसे अनंत गुने परमाणु है, उससे अनंत गुना त्रिकाल का समय है। अब जो परमाणु की संख्या है उसको रखो, उसके वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वो अनंत अनंत बार करो तो क्या होगा, तीन काल के समय हो गए। उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश है। प्रदेश कितना सूक्ष्म है, तो कहते ना अंगुल, इतना अंगुल होता है, लीनियर जिसको हम कहने, सिंगल लाइन में परमाणु को रखेंगे ऐसा, उसका असंख्यात भाग जो हमको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, उसमें इतने प्रदेश है कि उसको अगर हम समयों को समयों में कन्वर्ट करेंगे, उतने समय गिनेंगे तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाएगी। क्या करें, तो कहते इतने अनंत गुने आकाश के प्रदेश है, यह लोक है, वहां तक भगवान ने 14 ब्रह्मांड देखा है, वह असंख्य योजन में है। जो कहते ना उसके हाइट वाइज तो 14 राजू है, दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राजू है, पूर्व पश्चिम में ऊपर 1 राजू, फिर ब्रह्मस्वर्ग के पास 5 राजू, फिर 1 राजू, फिर नीचे 7 राजू, ऐसा उसका विस्तार है पूरा, जिसको 343 घन राजू कहेंगे, उसको 14 ब्रह्मांड कहने में आता है, उसको असंख्य योजन में है, क्योंकि एक एक राजू में असंख्यात असंख्यात योजन होते हैं। खाली भाग है वह अलोक है, यानी लोक के बाहर आकाश द्रव्य है, जो रिमेनिंग आकाश द्रव्य उसको अलोक कहा। अनंत 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 आकाश खाली जगह है, उसका कहीं अंत नहीं। उस आकाश में एक परमाणु जितनी जगह रोके उसे प्रदेश कहने में आता है। आपने पूछा था ना उसका साइज, एक प्रदेश कितना होता है, परमाणु जितना क्षेत्र रोकेगा उस क्षेत्र को हम एक प्रदेश कहेंगे। ऐसे आकाश के प्रदेश की जितनी संख्या है वह अपार है, उसका पार नहीं है, अनंत जिसको कहेंगे। दसों दिशा में कहीं पार नहीं, पीछे क्या पीछे क्या पीछे, अनंत 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 अनंत, लक्ष्य में चले जाओ तो कहीं अंत नहीं। चले जाओ ये कहने की पद्धति, अरे लोक के बाहर कोई जा नहीं सकता। ऐसे आकाश के प्रदेश की जो संख्या है उससे अनंत गुणे गुण एक आत्मा में है। अब उसकी तो महत्ता कभी आई नहीं, और बाहर की जो चकाचौंध है उसी की महिमा लगती है। समझ में आया, अरे एक परमाणु में भी अनंत गुण है। जितनी संख्या आत्मा में चैतन्य गुण की है उतनी ही वहां जड़ की संख्या है। क्या कहना चाहते हैं, परमाणु के सारे गुण कैसे है तो अचेतन है, जड़ है, और जीव चैतन्य चेतन है तो उसके सारे गुण चेतन है। तो जितने एक जीव द्रव्य में गुण है संख्या में, उतने ही गुण एक सिंगल प्रदेशी पुद्गल में है। तो आकाश इतना बड़ा है तो उसमें भी उतने ही अनंत गुण है, उसका भी एक एक गुण पूरा आकाश द्रव्य जितना बड़ा क्षेत्र व्याप्त है, क्योंकि गुण उसको कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में है। तो आकाश द्रव्य का एक गुण कितना बड़ा होगा नरेंद्र भाई, आकाश द्रव्य का एक एक गुण कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा आकाश है अनंत प्रदेश उतना ही, उतना बड़ा प्रत्येक गुण उसका। और एक प्रदेशी परमाणु का एक एक गुण कितना बड़ा? एक प्रदेश। ऐसे गुण कितने? अनंत। कितने अनंत? आकाश द्रव्य में जितने प्रदेश है उससे अनंत गुण है। गुण एक एक द्रव्य में होते हैं। हमारे में क्या है मालूम ही नहीं ना।
मेरे डावे हाथ में बैठते हैं अश्विन भाई, वो भी कुछ ऐसा एस्टोनिशिंग आता है तो अरे बाप रे कर ये भी उनकी गद्दी चला तो उन्हीं सीट पर बैठे।
वो सुबह बैठते हैं ना यहाँ पर, अरे बाप रे। उनको ऐसी कोई बड़ी संख्या आती है तो आश्चर्य लगता है। यहाँ कहते ना, समझ में आया, अरे एक परमाणु में भी अनंत गुण है। जितनी संख्या आत्मा में चैतन्य गुण की है उतनी वहां जड़ की संख्या, यानी जड़ के गुण। एक परमाणु में भी आकाश के प्रदेश से अनंत गुणे गुण है। आकाश के प्रदेशों की जितनी संख्या है वैसे प्रत्येक द्रव्य में गुणों की संख्या उससे भी अनंत गुणा है, ये कहना चाहते हैं। अभी तो द्रव्य और गुण किसे कहते हैं उसकी खबर नहीं, बाद में पर्याय कहेंगे। एक हिंदी भाई थे, वह लगता है कि चले गए, लगता है गए, सूक्ष्म बहुत पड़े। ऐसा कहते थे कि राग को मूर्त कहना चाहिए। अरे प्रभु दक्षाबेन वह तो व्यवहारने से, असद्भूत व्यवहारने से जानने लायक है। आदरणीय तो प्रभु आत्मा है जो त्रिकाल एक रूप स्वभाव भाव है, वह आदरणीय लायक है। ये तो एक समय में अज्ञान से खड़ा हुआ है मोह राग द्वेष जो है। अनंत गुण पूर्णानंद स्वरूप, अनंत 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 का कहीं अंत नहीं। इतनी अपार गुण शक्ति का भंडार प्रभु आत्मा है। ऐसे गुण भेद का भी आदर नहीं, क्या कहते हैं? इतना अनंत गुण है, देखो ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, कहते भेद मत करो। उसका पिंडक एक एक को लक्ष्य में लेना है। यहां लिखा ना, इसे गुण भेद का भी आदर नहीं। आदर नहीं, वो गुण भेद के लक्ष्य से भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि भेद पर लक्ष्य है तब तक राग है। जब मालूम नहीं है कुछ द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, तो गुरु भी समझाएंगे भेद करके, शिष्य भी भेद को समझकर हाँ द्रव्य ऐसा है इसमें इतना सब है ये समझेगा वहां पर, परंतु ये कब? प्राथमिक भूमिका में। एक बार ख्याल में आए पूरा द्रव्य कैसा है, तो अभी एक का लक्ष्य करना है, क्योंकि ये ऐसा इस स्वरूप तो मैं हूं। अभी वो गुण में इतने भेद होते हैं, पर्याय ऐसी होती है वैसी होती है, हाँ वो पहले में पहले ज्ञान का विषय था, वो जान लिया। अब अभेद अखंड का लक्ष्य करना है, उसी में एकाग्र होना है, तब कहेंगे ये जान लिया ना। अभी जान लिया तो ज्ञान में रहेगा वो तो अभी उसका लक्ष्य छोड़ दो। अब लक्ष्य किसका करो? वही जो एक जिसका इतना विस्तार से हमने जाना है, लक्ष्य उस एक का करना है, एकाग्रता उसकी करनी है। इसीलिए क्या कहा, गुण भेद का भी आदर नहीं। आदर करने लायक और उपादेय तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव जो है वह उपादेय है। आदर करना यानी क्या है? उसके गीत गाने क्या करना है? तो पहले उसको नक्की करके उसी में स्थिर हो जाना है, उसी का आश्रय लेना है ना, उसी को जानते रहना, वही उसका आदर है। उसे उपादेय आदरणीय करने से सम्यक होता है। आदरणीय करना कहा, कहने से नहीं कहा। बाकी दूसरी रीत से तीन काल में कभी सम्यक होता नहीं, यानी सम्यक दर्शन उसके अन्य किसी उपाय से नहीं होगा। देव गुरु और धर्म की श्रद्धा भी राग है, वह सम्यक नहीं। क्या कहते हैं? पहले में पहले कहेंगे देव का, गुरु का, शास्त्र का निर्णय करो और उनके प्रति भक्ति भी सहज आएगी, परंतु वो राग है, वो धर्म नहीं है, वह सम्यक नहीं है। नौ तत्व की भेद रूप श्रद्धा भी राग है, वह सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए चार बातें बताती है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रतीति कहो, श्रद्धा कहो, सात तत्वों की सही श्रद्धा, स्वप्रभेद विज्ञान और आत्मानुभूति। यहां तो कहते कि
श्रद्धा को राग कहा है।
हाँ।
अभी बताना ये चाहते हैं कि श्रद्धा के साथ जो राग है उसको उन्होंने प्राइम इम्पोर्टेंस देकर
भेद रूप श्रद्धा की बात की ना।
भेद रूप श्रद्धा की बात
वह
तो उसमें राग अधिक है इसलिए वो राग है ऐसा बता दे।
बिल्कुल, जहाँ भेद का लक्ष्य है, भेद की श्रद्धा है, वहाँ पर अभी राग चल रहा है और वो राग है, विकल्प है, तब तक उसको अनुभव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। यानी वो प्राथमिक भूमिका में आवे वो तो बिल्कुल आना नेचुरल है, परंतु अभी वो अनुभूति तक नहीं पहुंचा है। अगर वहीं पर अटका रहा कि हमने इतने भेदों का लक्ष्य किया, हमने इतने भेद कर करके जाना और सूक्ष्म बताओ और भेद करो, तो कहते भेद जानो परंतु अभेद का अनुभव करने के लिए अभी उसका लक्ष्य छोड़ दो, उसको गौण कर दो और भेद किसके, उस पूरे वस्तु को पकड़ो। भेद कहीं वस्तु में से बाहर निकाल नहीं सकते हम, वस्तु को भेद करके समझा था, अब वस्तु समझ में आई तभी भेदों का लक्ष्य क्यों कर रहे हैं, अब बस अखंड एक का लक्ष्य करो, ये कह रहे हैं। नव तत्व की भेद रूप श्रद्धा भी राग है, वह सम्य दर्शन नहीं है। ये बात है, वो तो भेद हो गए ना उसके, नव तत्व ने वो पर्याय रूप हो गए सब। आहा, भगवान आत्मा आकाश के प्रदेश की संख्या से भी जिसमें अनंत गुने गुण है, आकाश का अंत कहीं नहीं, उसके प्रदेश से अनंत गुने गुण, ऐसे अनंत गुण का एक रूप द्रव्य है। वो एक रूप की बात है, वह आ गया, विस्तार सामान्य आ गया, उसको विस्तार सामान्य कहा, विस्तार सामान्य समुदाय कहा था उसको, विस्तार सामान्य जो गुण है उसका एक रूप वह द्रव्य है, पिंड जो कहा, विस्तार सामान्य गुण द्रव्य के आधार पर है, ऐसे द्रव्य की दृष्टि करना, यानी वो अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड वह मैं, इस तरह से उसके उसके विकल्प करते रहो, बात नहीं, डायरेक्ट उसको जानो बस इतना, ऐसे द्रव्य की दृष्टि करना, ज्ञायक भाव पूर्णानंद स्वरूप प्रभु उसकी दृष्टि करना, पर की दृष्टि तो छोड़नी, और क्या छोड़ना, पर्याय दृष्टि छोड़नी, राग की दृष्टि छोड़नी, गुणगुणी भेद की दृष्टि भी छोड़नी, इतने मुझ में इतने अनंत गुण है, वो ज्ञान है, दर्शन है, तो कहते भी भेदों का लक्ष्य छोड़ दो, द्रव्य और उसके गुण, ये तो आप कहेंगे प्रवचन सार में वही तो बता रहे, हाँ तो उसको कुछ मालूम नहीं उसको बता रहे जिसको मालूम हो गया है, उसने द्रव्य गुण पर्याय को सही जान लिया है, अब उसके आगे अनुभव करना है, उसको अपने आत्मा को समझना है, तो उसके लिए सब दृष्टि छोड़कर, दृष्टि छोड़ना है ना, उसका ज्ञान छोड़ना ऐसा नहीं कहा, उसकी दृष्टि छोड़ना, उस पर लक्ष्य नहीं, वो मैं उसमें अपनापन, उसमें मैंपना स्थापित किया था, किसमें किसमें, पर में, क्योंकि शरीर मैं हूँ मान ही रहा था, पर्याय दृष्टि, पर्याय जितना मैं हूँ ये पर्याय दृष्टि है, राग की दृष्टि, राग जितना मैं हूँ ये भी माना, मैं एकमेक हो गया राग से ये माना, और वो राग करने से मुझे धर्म होगा ऐसा भी माना, उसकी भी दृष्टि छोड़नी है, गुणगुणी भेद की भी दृष्टि छोड़नी है। अतः गुणगुणी भेद से तो हम तो द्रव्य का लक्ष्य, हाँ द्रव्य का लक्ष्य करो, भेद का लक्ष्य छोड़ दो, ये कह रहे, उसकी भी दृष्टि छोड़नी है। हाँ समझ में तो सब लेना, देखो लिखा है ना समझ में सब लेना, सबका ज्ञान करना, ज्ञान तो बिल्कुल सबका करना है, पर को भी जानना है, पर्याय को भी जानना है, राग का भी जानना होगा, गुणगुणी भेद को भी जान लिया है, उस सबका ज्ञान, ज्ञान का कार्य जानना है। तो कहते समझने में तो सब लेना, क्या कहते हैं, पर्याय है, राग है ना, वो नहीं है वो तो उसको उड़ा नहीं देना कि नहीं है करके, है ना, वो ज्ञान में उसको बिल्कुल जान लिया है, तो पर्याय भी है, राग है, ये है तो सही, परंतु वह आश्रय करने लायक नहीं है, श्रद्धा में उसको कैसा है ये, और उपाधेय कौन, मैं स्वयं, इसको कहते हैं जो का त्यों श्रद्धा, जानना तो सातों तत्वों को, नौ तत्वों को है, परंतु उसको किस रूप से उसको श्रद्धा में लेना है, तो आश्रव बंद कहेंगे हे यह है संवर निजरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपाधेय है, और मैं स्वयं त्रिकाली नित्य ध्रुव को आश्रय करने योग्य उपाधेय है, बाकी अजीव परत ने बहुत सारे गेय है, ज्ञान के गेय है, बस इतना गेय करके उसी को जानते रहे वो बात नहीं है, उसी को कौन जानते रहेगा, उसको जिसकी रुचि उसमें पड़े, ख्याल है। तो इस तरह से ये सातों ही तत्वों में हेय गेय और उपाधेय श्रद्धान का है, श्रद्धान में है गेय उपाधेय होते हैं, और ज्ञान में ज्ञान के लिए तो सारे ही गेय है, ज्ञान तो सबको जानेगा, स्व को भी स्वभाव को भी पर्याय को भी राग को भी पर को भी, ये कहे ना समझने के लिए तो सब है, परंतु आदरने के लिए स्व स्वभाव, तो कहते ये है तो सही परंतु वह आश्रय करने लायक नहीं है, आश्रय करना है ना उसी को नक्की करके उसी को एकाग्र होकर उसी को जानते रहना, उसी में लीन होना, आश्रय करने लायक तो त्रिकाली प्रभु जिसे समय सार की 11वीं गाथा में भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो, उसको कहते भूतार्थ भगवान, उसको भूतार्थ कहा, जो त्रिकाल परमात्मा स्वरूप एक रूप है जिसको हम नित्य स्वभाव कहेंगे, त्रिकाली भगवान कहेंगे, उसी को भूतार्थ कहा, उसका आश्रय करने से समय दर्शन होता है, उसी में पर्याय उसी में लीन हो गई अभेद हो गई, तो कहते उसको समय दर्शन हो जाता है, बाकी और कोई रीत से समय दर्शन होता नहीं, और समय दर्शन बिना सच्चे ज्ञान चारित्र व्रत तप कुछ नहीं होते, ऐसी बातें हैं। वहां भी पर्याय को राग को अभूतार्थ कहा, परंतु वो है ही नहीं वाला अभूतार्थ नहीं है, ऊपर बताते ना राग है पर्याय है सब है, परंतु वो आश्रय करने लायक नहीं है, इसलिए उसको गौण करके उसको है ये कह दे उपा अभूतार्थ कह दे, है नहीं कह देंगे, दृष्टि में नहीं लेना उसको, वो तो आगे की बात है, फिर भी बारंबार समय सार के भी बीच में बात बता रहे हैं, यहाँ तो ज्ञान में पहले निर्णय सही होना है, यहाँ तो राग भी द्रव्य से होता है गुण से होता है ऐसा कहने में आ रहा है, ये प्रवचन सार है, यहाँ तो ज्ञान का विषय चलेगा, परंतु बीच में दृष्टि की अपेक्षा कैसे कथन आते हैं उसको भी बता रहे बारंबार, नहीं तो हमें लगेगा अरे वहां एक बात कहते यहाँ एक बात कहते, अच्छा हुआ एक ही आचार्य ने दोनों ग्रंथ लिखे, है ना, नहीं तो हम कुनकुन वाले हम इस वाले हम उस वाले हो जाता है, नहीं इसी से समय दर्शन होगा, अन्य किसी भी मेथड से नहीं होगा, ये कह रहे हैं, लोगों को यही लगता है ना कुछ व्रत आदि करे तो जल्दी होगा कि नहीं होगा, कुछ तो फायदा होगा ना, कुछ तो होगा ना, ऐसा कुछ तो यानी उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप में थोड़ा प्रेशर आ जाता है, उसमें प्रेशर है ना, कोई महत्व देना चाहते उसको, यानी उस अभी कहने के लिए कहेंगे दूसरों से नहीं, हम अपने से वाचा पहले नहीं करते थे अब कर रहे, अभी थोड़े तो बगड़े ना आगे आगे बढ़े तब कहेंगे जब धर्म की शुरुआत होगी। यहाँ यह कहते हैं विभाव पर्याय की व्याख्या चलती है, रूपादि के और ज्ञानादि के ये गुण है, रूप यानी वर्ण जो है और ज्ञान जो है ये गुण है, उसके पूर्वोत्तर अवस्था अवस्था कहने जो है पर्याय, ज्ञान गुण तो अनादि अनंत है और उसके पर्याय जो मति ज्ञान वगैरह हीनादि होती रहती है, तो कहते उसके पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर, पूर्व अवस्था और उसकी पश्चात वाली अवस्था, अवस्था में होने वाले तारतम्य, तारतम्य ने हीनाधिक, उसके कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप, विभाव है तो स्वभाव विशेष रूप, क्या कहा कल बात इसकी हुई थी ना, यानी वो योग्यता रूप वो स्वभाव जीव में ही पड़ा है कि राग रूप परिणमित होने का, लोग चिल्लाते थे ना राग द्वेष जीव के पर्याय, विभाव जीव के पर्याय आत्मा से हुई है, यह कहते कि विभाव आत्मा से हुआ है पर से नहीं, पहले उसको स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे से है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं कह दो तो है ही नहीं तो दुखी क्यों हो, पता है ना, एक द्रव्य जो है अथवा प्रत्येक द्रव्य जो अनंत है, यानी एक एक करके सभी द्रव्यों की संख्या अनंत है, वे अपने गुण और अपनी पर्याय को चूमते हैं, छूते हैं, परंतु पर की पर्याय को तो कभी छूते ही नहीं, क्योंकि जैसे गुण उसके संपूर्ण भागों में है, अवस्था की बात छोड़ो, ऐसे पर्याय उसकी अवस्था है, वो अवस्था भी कहाँ होती है, द्रव्य के पूरे भाग में होती, एक समय के लिए है परंतु पूरे भाग में है, और द्रव्य उस समय उसके साथ तद्रूप है, एक समय के लिए। उसको कौन सा संबंध कहा है उमा बेन, याद है द्रव्य का और पर्याय का? गुण के साथ नित्य है, पर्याय के साथ एक क्षण पूर्ता है ना, एक समय, अनित्य तादात्म्य, तादात्म्य में एकमेक है, वो समय के लिए उससे कोई उसको जुदा नहीं कर सकता, एकमेक है उसके साथ, और वो भी संपूर्ण भाग में है। हाँ, यही कह रहे यहाँ पर विभाव है, ये बताए ना, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और अपनी पर्याय को चूमते हैं, छूते हैं, यानी उस समय वो तद्रूप है, उस रूप है, उससे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के अपने द्रव्य क्षेत्र में है ना वो तो। परंतु पर की पर्याय को तो कभी छूते ही नहीं, यानी पर के द्रव्य के साथ और उसके पर्याय के साथ इसका कोई संबंध नहीं। अरे ऐसी बात समझ में आया, समय सार की तीसरी गाथा में कहा है, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और त्रिकाली शक्ति विस्तार सामान्य और आयत सामान्य पर्याय, गुण को ही विस्तार सामान्य कहा, शक्ति कहा, आयत सामान्य उसके जो भेद है वो पर्याय, उसको ही यानी गुण पर्याय को ही द्रव्य चूमते हैं, छूते हैं, पर की पर्याय को तीन काल तीन लोक में छूते नहीं, यानी उसका कोई पर से संबंध नहीं, ना पर द्रव्य से ना उसके पर्याय से। आत्मा कर्म की पर्याय को कभी छुआ ही नहीं, आत्मा शरीर की पर्याय को कभी छुआ ही नहीं, शरीर की पर्याय आत्मा को कभी छुई नहीं, कर्म का उदय राग को कभी छुआ नहीं। वो आता है ना, कर्म के उदय में राग होता है, हाँ वो कर्म का उदय कर्म में रहा, जीव का राग परिणाम जीव में है, तो उसने उसको नहीं कराया है, वो अपने अपने दोनों है। श्रोता कहते इसमें तो स्वपर के कारण ऐसा लिखा है, स्वपर का अर्थ क्या किया था याद है सुशीला? स्वपर के कारण ऐसा कहा, स्व में क्या लिया था?
मेरा
नहीं,
मेरा ज्ञान।
लक्ष्मी, स्वपर के कारण, पर्याय स्वपर के कारण होती है, भूल गए, कल ही बात आई थी, याद है क्या ताराबेन? उपादान और निमित्त, उपादान निमित्त, स्वपर के कारण यानी उपादान और निमित्त के कारण, क्योंकि जब कार्य होता है तो उपादान भी है निमित्त भी है, उपादान तो स्वद्रव्य में होता है और निमित्त तो परद्रव्य है, यहाँ लिखा है ना, इसीलिए श्रोता ने पूछ लिया, क्या पूछा, इसमें तो स्वपर के कारण ऐसा लिखा है, कल ही हमने पढ़ा था। हाँ देखो समाधान, निमित्त कहा ना, निमित्त कारण है, स्व एटले उपादान स्वयं से हुआ है, निमित्त कारण है, विभाव कहना है ना, विभाव बतलाना है ना, इसलिए फिर भी स्वभाव विशेष कहा है। क्या कहा? विभाव होता है वहां कोई ना कोई सामने निमित्त की भी उपस्थिति है, तो वो बस विभाव है ये बताने के लिए वहां स्वपर का कारण बता दिया, परंतु उसको फिर भी स्वभाव विशेष कहा, स्वभाव विशेष कहकर उसको उपादान बताना है, विशिष्ट स्वभाव है ना वो, तो परिणमने का भी कुछ स्वभाव है उसमें, तभी तो उस परिणम सकता है, बिना उसके ऐसे कोई योग्यता ही नहीं हो तो परिणम कैसा सकता, अगर जीव में राग रूप होने की योग्यता ही नहीं हो तो वो उस रूप परिणमेगा कैसा, इसलिए उसको स्वभाव विशेष कहा। तारतम्य के कारण, ऊपर बात आई थी ना, पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य, देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति विभाव पर्याय है, स्वभाव विशेष का ना अलग अलग पर्याय में अलग अलग विशेषताएं दिखती है, हीनाधिकता दिखती है, अनेक पना दिखाई देता है। वो द्रव्य पर्याय में क्या है, द्रव्य अनेक थे और सब में मिलकर एक पना दिखाई दे रहा था, अनेकों में एक पने का ज्ञान, और अभी इसमें क्या अनेक पना का ज्ञान। स्वभाव विशेष तारतम्य रूप अनेकता का ज्ञान होता है, आपत्ति ने वही ज्ञान हो जाता है, वो विभाव पर्याय। अब यह पूर्वोक्त कथन दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। पूर्वोक्त बात, पूर्वोक्त ने ऊपर बताई हुई, एकदम समझ में नहीं आए तो हम समझाने को दृष्टांत से कहते हैं। इस प्रकार अमृतचंद्राचार्य महाराज दृष्टांत देकर समझाते हैं। यह अमृतचंद्राचार्य ने दृष्टांत दिया है, जैसे संपूर्ण पट, पट यानी वस्त्र, क्योंकि आचार्य तो हमेशा घट की पट की बात करते हैं। अवस्थाई यानी स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय से वस्त्र जो है उसके सामान्य विस्तार गुण है, और दौड़ते हुए पर्याय ऐसे आयत सामान्य समुदाय से रचित होता हुआ तन्मय ही है यानी उसमय ही है। वस्त्र के अनंत गुण और उसके पर्याय है, उस गुण पर्याय में यानी गुण में और पर्याय में, गुण और पर्याय मिलकर वस्त्र तन्मय है। पट यानी वस्त्र जो है वो तन्मय उसमय है। समझ में आया, भाषा तो सादी है। यहाँ तो कहते हैं कि पट यानी वस्त्र स्थिर विस्तार सामान्य समुदाय स्वरूप है, यानी उसके गुण रूप है, गुणमय है। आत्मा में गुण जो है वे स्थिर ध्रुव है। अभी तो पट में कहते हैं, फिर आत्मा में उतारेंगे, क्योंकि जो हमारी जो नॉन चीजें होती ज्ञात होती है उसको समझा कर फिर दृष्टांत देकर अज्ञात की ओर चले जाते हैं।
मेरा एक प्रश्न है, ये पट में कौन से गुण है विस्तार सामान्य रूप से, दक्षा में ना बताएंगे? बहुत अच्छे, क्योंकि वो पुद्गल है, दिखता है, तो निश्चित रूप से उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि अनंत गुण होंगे।
बराबर, वो उसका गुण है। देखो तीसरी लाइन है, विस्तार सामान्य समुदाय से और दौड़ते, पट में एक के बाद एक पर्याय होती है, एक के बाद एक अवस्था दौड़ती हुई हो रही है, यानी बीच में विघ्न नहीं है, पट में क्रमबद्ध पर्याय चलती है। क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझे, ये हमेशा स्टोरी बताते हैं ना उनकी माँ की, कि बड़े भाई के शादी में वो साड़ी लाई थी जरी की, तो क्या सोचा कि मेरे छोटे बेटे के शादी में अभी ये मैं पहनूंगी, तो रख दिया अंदर, और शादी के दिन जब निकाली तब क्या हुआ था। तो वो कैसे एक एक समय कर करके उसमें वो पर्याय बदलती गई। हमें तो लगता है रे ऐसा कैसे हुआ, हमने अभी कैरी का सीजन है, हाँ कच्ची कैरी ला के रखी और वो 8-10 दिन में वो पीली हो गई, पक गई, तो 10 दिन में अचानक पीली हो गई क्या? एक एक समय करके 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 उसमें जो हमारे वो ख्याल में समय समय वाली पर्याय ख्याल में नहीं आती, हम तो आज देखा तो कल थोड़ा खोल के देखेंगे तो थोड़ा चेंज लगेगा, परंतु समय समय करके उसमें परिवर्तन हो रहा है, ये कह रहे। अभी जो पट है उसमें भी, उसके भी जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो कुछ है उसमें भी वो पर्याय बदलती रहती, उसको कहेंगे दौड़ता हुआ। दौड़ता है वो परिणमन बताना है, उसको दौड़ता हुआ कहेंगे, ये न बहते क्रमबद्ध पर्याय चलती है, बहते प्रवाह रूप हुए ऐसे आयत सामान्य समुदाय से रचित होता हुआ तन्मय ही है, उसमय ही है, जिस समय जो अवस्था है उसमय ही होता है द्रव्य। पट अपने गुण और पर्याय में तन्मय है। पट यह वस्त्र जो है वह अपने वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुण है और अपनी पर्याय है, ऐसे अपने गुण पर्याय में यह वस्त्र तन्मय है। आत्मा को तो छूता नहीं, शरीर को वस्त्र छूता नहीं, क्या कह रहे हैं?
ऐसा क्यों कहा? शरीर को वस्त्र छूता नहीं, ऐसा क्यों कहा? हाँ, उनमें अन्योन्य भाव है। स्कंद स्कंद है ना, ये एक स्कंद है शरीर, एक वस्त्र दूसरा स्कंद है, इसलिए क्या कह रहे हैं? देखो, शरीर को छूता भी नहीं, आत्मा को तो छूता नहीं, शरीर को वस्त्र छूता, मिला क्या? नीचे से तीसरी लाइन उस पैराग्राफ की, ऐसी बातें कहाँ की होगी बापू, भगवान के घर की यह बात है। साक्षात जिनेंद्र भगवान ने बताई हुई है, जिनेश्वर देव उनका कहा हुआ, जो द्रव्य तत्व उनके कहे हुए गुण और पर्याय, ये कोई अलौकिक बातें हैं। कहते हैं कि पट अपने विस्तार सामान्य समुदाय यानी गुण और क्रम क्रम में होती हुई पर्याय उससे रचित होता हुआ पट गुण पर्याय में तन्मय है, यानी गुण पर्याय रूप है, उसमय है, तन्मय, तत्मय, अपने गुण पर्याय में वस्त्र तन्मय है, वस्त्र शरीर को छूता नहीं, अपने गुण और पर्याय से एक प्रदेश भी दूर हटते नहीं, क्योंकि जो क्षेत्र द्रव्य का है वही गुण का है, वही पर्याय का है, एक प्रदेश भी यहां से वहां नहीं हटेगा। वस्त्र कोई जुदा है और गुण पर्याय कहीं अन्य क्षेत्र में, ऐसा कभी नहीं होगा। यह तो भगवान की त्राणवी गाथा है, अभी तो प्रवचन सार के गे अधिकार की पहली गाथा है। यह समकित अधिकार है, अरे उसे इसका अभ्यास चाहिए भाई, यह तो वीतराग की कॉलेज है, सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ के कथन की कॉलेज है। बाहर कॉलेज में एडमिशन के लिए वो तो लाखों रुपए खर्च करेगा और ये अमूल्य ऐसी चीज है, उसकी तो उसको कीमत ही नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत जानपना हो तो कॉलेज में समझ सके। दृष्टांत देकर क्या कहा कि जैसे यह वस्त्र है, वह अपने गुण जो कायम रहने वाली शक्तियां, कौन सी? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और अवस्था, यह सफेद रंग आदि उसकी पर्याय है, वह एक के बाद एक होती है, ये गुण पर्याय में वस्त्र तन्मय है, यानी वस्त्र कोई जुदी चीज नहीं, उसमय ही है। ऐसे प्रत्येक पदार्थ है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण यानी सभी पदार्थ द्रव्य नामक अवस्थाई, अवस्थाई ने वो ध्रुव सिर, द्रव्य नामक अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय से, यानी विस्तार सामान्य समुदाय कैसा है? कायम रहने वाला, अवस्थाई ने ध्रुव है, नित्य है, और दौड़ते हुए ये गुणों को नित्य कहा, और पर्याय कैसे एक के बाद होती है? दौड़ते हुए, दौड़ते हुए आयत सामान्य समुदाय से रचित होता हुआ, हा हा, प्रत्येक वस्तु परमाणु से लेकर आत्मा, भगवान का आत्मा और भगवान की वाणी। तो भगवान का आत्मा कौन सा द्रव्य और भगवान की वाणी कौन सा द्रव्य है? हाँ बेलोगर जी, भगवान का आत्मा कौन सा द्रव्य है? हाँ, और भगवान की वाणी? हाँ, ये सब द्रव्य अपने गुण और पर्याय में तन्मय है। वाणी जो है वह भी अपने गुण और पर्याय में तन्मय है, भले वो भगवान की वाणी कहने में आती है, वो तो उपचार कथन है, तो वो तो अपने गुण पर्याय में तन्मय है। भगवान के साथ वाणी का कोई संबंध है ही नहीं, फिर होंगे भगवान की वाणी तो कहते पद्धति होंगी, भगवान की दिव्य ध्वनि कहेंगे उसको, परंतु उसका उसका कोई संबंध नहीं। पहले मैंने द्रव्य जुदे जुदे है, वो अपने गुण और पर्याय उसके साथ तन्मय है, पर को वो चूमते भी नहीं, छूते भी नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव का तत्वज्ञान बहुत भिन्न है,
और ये बात तो उन्हीं की वाणी में आ गई है पूरे जगत में कहीं है नहीं। वेदांत कहते हैं ना कि सर्वव्यापक एक आत्मा है, सब मिथ्या भ्रम है, एक है तो एक आत्मा ही है सर्वव्यापक और बाकी सब ये माया दिखती है। यह तो सर्वज्ञ परमेश्वर ने एक समय में तीन काल तीन लोग देखे, उनकी वाणी में यह स्वरूप आया है। हा हा हा, अभी है ना समय के पीछे दो तीन मिनट है। क्या कहते हैं, वस्त्र द्रव्य है, ये वस्त्र को द्रव्य कहा, ये दृष्टांत है क्योंकि वो भी एक स्कंद है ना, अनंत परमाणु का पिंड है। पर समझाए कैसे, हमको समझना तो द्रव्य को है परंतु समझाते हैं स्थूल लौकिक। जैसे अब यहाँ पर विषक्कर को द्रव्य कहेंगे या गुड़ को द्रव्य कहेंगे, सोना को द्रव्य कहेंगे, समझाने के लिए परंतु वो तो एक द्रव्य पर्याय है, अनंत परमाणु का स्कंद है, परंतु समझे कैसे, इसलिए यहाँ वस्त्र एक द्रव्य समझकर उसको समझाया जाता है। तो कहते वस्त्र द्रव्य है, तो यह द्रव्य यानी वस्त्र अपने गुण और पर्याय में तन्मय है। ऐसे सर्व पदार्थ कौन, परमाणु, सिद्ध, आत्मा, निगोद का जीव अथवा सब, सब यानी सब धर्म अधर्म आकाशकाल सभी अपने गुण और पर्याय में सब द्रव्य तन्मय है। उसके यानी जीव के साथ जो कर्म है उस कर्म के साथ तन्मय है ही नहीं। कर्म जो है वह समान जातीय द्रव्य पर्याय है, आत्मा के साथ उसका संबंध है नहीं, ऐसी सूक्ष्म बात है। पहले में असमान कहा, समान बताए, कर्म क्या है वो स्कंद है, कर्म इटसेल्फ स्कंद है। कर अनेक परमाणुओं को एक साथ बंधा हुआ वो कर्म बना उसका। कर्म क्या है, परमाणु का पिंड है। आप कौन से कर्म की बात करें, कौन सा कर्म, आत्मा और कर्म को नहीं लिया। कर्म जो है वह अकेला कर्म को लेना, वो एक पिंड है ना, आठों कर्मों का समूह है, उसमें अनंत अनंत परमाणु का वो पिंड है। तो वो क्या है, समान जातीय द्रव्य पर्याय है, आत्मा के साथ उसका संबंध है ही नहीं। पहले में पहले ये नक्की करना है, ऐसी सूक्ष्म बात है। अधिकार जो चलता है वैसा कहने में आए दूसरा क्या करे, जहाँ जो विषय चलेगा उसका वैसा कथन होगा। भगवान तीन लोक के नाथ जैसा कहते हैं ऐसा कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, उसे टीकाकार रामचंद्राचार्य स्पष्ट करते हैं, उसका यहाँ स्पष्टीकरण होता है। यही रुकेंगे अभी, कल मिलेंगे शाम को, कल सुबह नहीं अपना, शाम को आना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। सुशीला बेन।